शांतिष्टक का चौथा काव्य आचार्य पूज्यपाद स्वामी की भक्तिधारा। त्रैलोकेश्वर भंग लब्ध विजया दत्यंत रौद्रात्मका नाना जन्म शतांतरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः को वा प्रस्खलति केन विधिना कालो गृदावानला न स्याच्चेत्तव पादपद्म युगलस्तुत्यापगा वारणम्। त्रैलोकेश्वर भंग लब्ध विजयात अत्यंत रौद्रात्मकात कालोग्रदावानलात। त्रैलोकेश्वर त्रयाणाम लोकानाम समाहार त्रिलोकी, त्रिलोकी एव त्रैलोक्यम, तीनों लोकों के समूह को त्रिलोकी कहते हैं और त्रिलोकी को ही त्रैलोक्य भी कहते हैं। तो तीनों लोक संबंधी जो प्रधान है, देवलोक में इंद्र है, मनुष्य लोक में चक्रवर्ती, अधोलोक में नागेंद्र है, तो इन सब को भंग करके लब्ध हुई है विजय जिसको, तीनों लोकों के प्रधानों को नष्ट करके जो विजय को प्राप्त हुआ है और अत्यंत रौद्रात्मकान, संधि होने से न हो गया, मूल शब्द पंचमी का एक वचन अत्यंत रौद्रात्मकात तहलंत, जो अत्यंत रौद्र स्वरूपी है, निर्दय है, क्रूर है, ऐसे कालोग्रदावानलात, काल कृतांत मृत्यु मरण रूपी उग्रदावानल प्रचंड वनाग्नि कहां पर है? नाना जन्म शतांतरेषु संसारेण जीवस्य पुरतः। विभिन्न प्रकार के जन्म शतांतरेषु, सैकड़ों प्रकार के जन्मों में अनेक प्रकार के सैकड़ों जन्मांतरों में संसारेण जीवस्य पुरतः, संसारी जीव के समक्ष प्रत्येक भाव के अंत में सामने उपस्थित होने वाला जो काल रूपी उग्र दावानल है, उससे यह इस जगत में केन विधिना, किस विधि द्वारा, कोवा प्रस्खलति, कौन भला मानुष बच सकता था, चेत यदि तव पाद पद्म युगल स्तुत्यापगा वारण न स्यात्। आपके चरण कमल युगल की स्तुति रूपी नदी वारणम न स्यात्, रक्षक नहीं होती। तात्पर्य है कि तीनों जगत के प्रधानों को मरण के मुख में प्रविष्ट कराने के कारण वह काल, जिसको लोक में यमराज भी कहते हैं, विजय को प्राप्त हुआ है। जिनने सबको जीता उनको भी काल ने जीत लिया, और जो अत्यंत रौद्र रूप है, इसका तात्पर्य है कि वो क्रूर है, काल जन्म हुए बालक को भी नहीं छोड़ता, काल किसी पर दया नहीं करता, अत्यंत क्रूर है। नाना जन्म शतांतरेषु, विभिन्न प्रकार के सैकड़ों जन्मांतरों में जो संसारेण जीवस्य पुरतः, संसारी जीव के समक्ष उपस्थित है, ऐसे काल रूपी उग्र दावानल से किस विधि द्वारा कौन भला मानुष बच सकता, यदि आपके चरण कमल युगल की स्तुति रूपी नदी रक्षक न होती। जैसे वन में आग लगती है और कोई प्राणी नदी में प्रविष्ट हो जाए तो फिर वहां पर उस आग से उसकी रक्षा हो जाती है, क्योंकि आग नदी में क्या करेगी, वो तो जहां पर ईंधन है वहां पर अपना काम करेगी, लेकिन नदी तो जल रूप है, जो जल में चला गया वो वनाग्नि से सुरक्षित हो गया। इसी प्रकार जो भगवान के चरण कमल युगल की स्तुति रूपी नदी में चला गया, वो मृत्यु से भी बच गया। अब इस बात को सुनकर के जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, स्वाध्याय करने वाले लोग हैं, जो जानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति तपस्या से होती है, उनके मन में कुछ तरंगें उठ सकती है कि अरे, हमने तो सुना था कि मोक्ष ऐसे प्राप्त होता है और यहां तो काल से बचने की बात कर रहे हैं, तो काल से बचने का मतलब क्या है? केवल सिद्ध परमात्मा ऐसे भगवान है, केवल मुक्तात्मा ही ऐसी आत्मा है जिनको मृत्यु छू नहीं सकती, बाकी सब अपनी आयु पूर्ण करके मरण को प्राप्त होते हैं। आयु को जिस प्रकार से पूर्ण करे, आगम में जो दो प्रकार बतलाए हैं, क्रम से और अक्रम से, दोनों में से जिस प्रकार से आयु को पूर्ण करे, लेकिन आयु पूर्ण करके ही मरण होता है। तो ऐसी स्थिति में उस मरण से पार होने वाले तो सिद्ध परमेश्वरी हैं, और यहां पर भगवान के चरणों की स्तुति से उसकी रक्षा हो जाती है, इसका क्या अर्थ हुआ? यहां पर भी स्याद्वाद शरणभूत है, क्योंकि आगम में जहां पर भी जो कथन है उसका कोई प्रतिपक्षी कथन आप देखिए, अगर कहीं लिखा है भक्ति से मुक्ति और कहीं लिखा है तपस्या से मुक्ति, तो फिर ये दोनों कथन प्रतिपक्षी जैसे हैं, इनमें विरोधाभास है, पर तो भी कुछ राज है इसमें। जिन्होंने भक्ति से मुक्ति की बात की है उनके विषय में ऐसी कल्पना करना अपनी नादानी को अभिव्यक्त करना है कि वो तपस्या से मुक्ति का रहस्य नहीं जानते थे, और जो तपस्या से मुक्ति की बात कर रहे हैं उनके विषय में ऐसा सोचना कि वो भक्ति से मुक्ति वाली बात तो वो कर ही नहीं रहे, तो क्या वो नहीं जानते थे? दोनों दोनों चीजें जानते थे, और यदि स्याद्वाद से विचार करें तो फिर दोनों में से एक की भी कमी निर्वाण में निस्संदेह बाधक है। भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है, तपस्या के बिना भी मुक्ति नहीं है, और दोनों अपना अपना आग्रह रखने वाले हों तो फिर भटके हुए हैं। जो सच्चा भक्त होगा वो ये भी तो जानता होगा कि भगवान कैसे मोक्ष गए, और जो सच्चा तपस्वी होगा वो भी यह जानता होगा कि भक्ति के बिना मैं कितना भी कुछ कर लूं मैं पार लगने वाला नहीं हूं। इसलिए अभी हम बहुत गहराई में नहीं जा रहे हैं, स्थूल रूप से सिर्फ इतना संकेत कर रहे हैं कि आगम के अनुसार विचार करने पर दोनों में संतुलन है, बैलेंस है। उस संतुलन को यदि कोई स्वाध्याय के द्वारा, यदि कोई अपने अंतर मंथन चिंतन मनन द्वारा पहचान ले, फिर वो इसके रहस्य तक जा सकता है। यहां पर बहुत बड़ी बात कही है कि भगवान के चरण कमल युगल की स्तुति वो नदी है जिसमें प्रवेश करने वाला काल रूपी उग्र दावानल से बच जाता है। कौन बच सकता था? अगर वो नदी न होती तो इसका अर्थ ये हुआ कि बड़ा बनना हो तो बड़ों की विनय पहले सीखनी होगी। अभिमान से कोई बड़ा नहीं बन जाता, विनय झुकाती है, अपने को झुकाती है, लेकिन अपन झुक करके उन्नत बन जाते हैं, निर्मल बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं, और पवित्र बन करके ही महान बन जाते हैं, और जब अपन महान बन जाते हैं तो फिर और लोग विनय करते हैं। जो अपने आप को बड़ा समझकर विनय चाहता है वो विनय का सच्चा पात्र नहीं होता, और जो पात्र होता है वो कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इसकी परवाह नहीं करता। उसने अपनी शुद्धिकरण की प्रक्रिया को, अपने आप को निर्मल बनाने के लिए प्रारंभ किया था, दुनिया को झुकाने के लिए नहीं। झुकाने के लिए तो और भी उपाय थे, यश कीर्ति सत्ता शक्ति प्रभाव, इनको हासिल करके भी बहुत लोग बहुतों को झुका लेते हैं, लेकिन ये तो निर्मल होने का मार्ग था। इस मार्ग में झुकने की तो भावना होती है, झुकाने की भावना नहीं होती। ये भक्ति का मार्ग ऐसा मार्ग है कि कई बार भक्तों की कठिन परीक्षाएं होती है, कई बार उनके प्रति दुर्व्यवहार किया जाता है, कई बार उनको क्लेशित किया जाता है, कई बार उनको बेचैन रखने का प्रयत्न किया जाता है, पर इतनी कठिन परीक्षाओं में भी वो अपनी आस्था को डगमगाने नहीं देता और हमेशा यही विचार करता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इस भक्ति का फल नहीं है। भक्ति तो मुझे इन संकटों में भी आनंद प्रदान कर रही है, मुझे जो कुछ मिल रहा है वो मेरा किया कराया है, पहले जैसा मैंने किया था आज वैसा मेरे प्रति हो रहा है, इसलिए मैं भक्ति से विचलित कैसे हो सकता हूं। इसका पद्यानुवाद है,
विविध सैकड़ों भवांतरों में काल दवानल सर्वजयी, शक्र चक्र धर धरणेन्द्रों का विध्वंसक विध्वंसमयी, उस निर्दय से इस भवन में कोई कैसे बच पाता, तव पद पंकज की स्तुति सरिता अगर नहीं होती त्राता, जय जय शांतिनाथ स्वामी, जय जय शांतिनाथ स्वामी, जय जय शांतिनाथ स्वामी, जय जय शांतिनाथ स्वामी, जय जय शांतिनाथ स्वामी।
जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।